एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन उतनी ही दिलचस्प चीज की गहराई में उतर रहे हैं, लिखाई मतलब लेखन।
नमस्कार, और इसके लिए हम एंड्रू रॉबिन्सन की किताब राइटिंग एंड स्क्रिप्ट्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। देखिए, सुनने में ये टॉपिक शायद थोड़ा सूखा सा लगे, है ना?
हाँ, शायद।
पर सोचिए जरा, हम जो अक्षर रोज इस्तेमाल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ये सब आया कहाँ से?
और ये सिर्फ मतलब भाषा को कागज पर उतारना भर नहीं है।
सही कह रहे हैं।
इस एक आविष्कार ने हमारी सोच, हमारा समाज और शायद हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को भी बदला है।
बिल्कुल।
तो आज हम इसी कह लीजिए 5000 साल पुराने सफर को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे वो मिट्टी की गोलियों पर बने निशानों से लेकर आज के इमोजी तक।
हाँ, कैसे लिखने के इन तरीकों ने दुनिया को, हमारी आज की डिजिटल दुनिया को भी शक्ल दी है।
तो इस सफर पर हमारे गाइड हैं एंड्रू रॉबिन्सन। जरा इनके बारे में बताइए, कौन है ये?
एंड्रू रॉबिन्सन ये एक ब्रिटिश लेखक हैं और पहले द टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट के लिटरेरी एडिटर भी रहे हैं।
अच्छा।
उनकी खासियत यही है कि वो जैसे विज्ञान है, इतिहास है, ऐसे मुश्किल विषयों को भी कहानी की तरह बना देते हैं आम लोगों के लिए।
मतलब भारी भरकम अकादमिक भाषा नहीं, आसान।
हाँ बिल्कुल, और ख़ास तौर पर उनको पुरानी लिपियों में और जो लिपियाँ अभी तक पढ़ी नहीं जा सकीं उनमें बहुत दिलचस्पी है। उन्होंने जैसे लीनियर बी लिपि को समझने वाले माइकल वेंट्रीज थे, उनकी जीवनी लिखी है, और भी कई अनसुलझी लिपियों पर किताबें हैं। कुल मिलाकर 25 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं उन्होंने, पुरातत्व, भाषा, संस्कृति, इन सबको जोड़कर। तो हाँ, इस विषय पर बात करने के लिए काफ़ी सही व्यक्ति हैं।
तो चलिए अब किताब के मूल विचार पर आते हैं। रॉबिन्सन का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो?
देखिए, उनका सबसे बड़ा दावा तो ये है कि लिखना सीखना मानव इतिहास में शायद आग जलाने या पहिया बनाने जितना ही बड़ा एक तरह का इंकलाब था।
अरे, इतना बड़ा?
हाँ, वो कहते हैं ये सिर्फ बोली हुई बात को रिकॉर्ड करने का तरीका नहीं है,
नहीं।
ये एक ऐसी तकनीक है जिसने इंसान के सोचने के तरीके को, समाज कैसे बनते हैं और इतिहास की पूरी दिशा ही मौलिक रूप से बदल दी।
ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब लिखना सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं बल्कि माइंड बदलने वाला टूल है।
बिल्कुल, यही किताब दिखाती है कि लिखन कैसे शुरू हुआ, कैसे काम करता है और दुनिया भर में इसकी जो अलग अलग प्रणालियां हैं।
जैसे?
जैसे लोगोग्राफिक, जहां निशान का मतलब पूरा शब्द होता है, या सिलेबिक, जहां निशान का मतलब अक्षर होता है, और अल्फाबेटिक, जहां निशान मतलब एक ध्वनि होती है। इन सब का विकास कैसे हुआ?
और मुझे लगता है ये इस आम सोच को भी चुनौती देती है कि हमारी वाली वर्णमाला मतलब अल्फाबेट वही सबसे बढ़िया है।
हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है।
रॉबिन्सन जो है वो पश्चिमी सोच की बस अल्फाबेट ही सबसे आगे है उस पर सवाल उठाते हैं। वो दिखाते हैं कि लेखन असल में अलग अलग तरह की प्रणालियों का एक बड़ा विविध परिवार है और ये सब बदलती रहती हैं। ये किताब एक तरह से थोड़ी जासूसी कहानी जैसी भी लगती है, पुरानी लिपियों के कोड कैसे तोड़े गए उसका रोमांच भी है इसमें।
तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोड तोड़ने की बात हुई है तो रोजेटा स्टोन, इसका जिक्र तो आएगा ही।
हाँ बिल्कुल, कहानी अक्सर यहीं से शुरू की जाती है। 1799 में मिस्र में नेपोलियन की सेना को ये पत्थर मिला था।
हाँ,
और इस पर एक ही शाही फरमान तीन लिपियों में लिखा था। एक तो थी प्राचीन मिस्री चित्रलिपि मतलब हायरोग्लिफ, दूसरी डेमोटिक जो रोजमर्रा की मिस्री लिखाई थी, और तीसरी प्राचीन यूनानी।
और क्योंकि यूनानी पढ़ी जा सकती थी तो ये बाकी दो को समझने की चाबी बन गया। सही, और इसे समझने का क्रेडिट जाता है फ्रांसीसी विद्वान ज़ियोंग फ्रांसुआ शैम्पोलियोंग को। 1822 में उन्होंने ये पहेली सुलझाई।
और क्या पता चला?
उन्होंने ये दिखाया कि मिस्र के वो जो सुंदर से चित्र दिखते हैं वो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, वो असल में ध्वनि चिन्हों आवाज के लिए और शब्द चिन्हों पूरे शब्द या विचार के लिए का एक मिलाजुला कॉम्प्लेक्स सिस्टम थे।
अच्छा।
इससे ये साबित हुआ कि लिपियां सिर्फ कलाकारी नहीं है, उनके पीछे एक लॉजिक है, एक सिस्टम है।
यहीं पर शायद रॉबिन्सन वो तीन मुख्य प्रकार की लिपियों की बात करते हैं ना?
हाँ, मोटे तौर पर तीन तरह की व्यवस्थाएं बताते हैं वो। पहला है लोगोग्राफिक, जहां एक निशान इज इक्वल को एक पूरा शब्द या मतलब, जैसे चीनी का मुख मतलब पेड़, या अपना एंड का निशान और के लिए।
ठीक।
दूसरा है सिलेबिक या अक्षरात्मक, जहां एक निशान इज इक्वल टू एक पूरा अक्षर या सिलेबल, जैसे जापानी काना का का, या अपनी देवनागरी में देख लीजिए क की कू, ये सब सिलेबल ही तो है।
हाँ सही है।
और तीसरा है अल्फाबेटिक या वर्णात्मक, जहां एक निशान एक मूल ध्वनि मतलब फोनीम, व्यंजन या स्वर, जैसे रोमन का के या देवनागरी का हलंत वाला क्व।
और इन सिस्टम्स के बनने में एक बड़ी वैचारिक छलांग थी रिबस सिद्धांत, ये क्या चीज है?
हाँ, ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। रिबस मतलब किसी चीज के चित्र का इस्तेमाल उस चीज के लिए नहीं करना, बल्कि उसके नाम की आवाज के लिए करना।
उदाहरण,
जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में बिलीफ लिखना है, तो आप क्या करें, मधुमक्खी बी का चित्र बना दें और पत्ता लीफ का चित्र बना दें, तो बी प्लस लीफ की आवाज मिलकर बिलीफ की आवाज बन गई।
अच्छा समझ गया, मतलब चित्रों से आवाज पकड़ना। इससे तो लिखने की दुनिया ही बदल गई होगी।
बिल्कुल, अब सिर्फ दिखने वाली चीजें ही नहीं, अमूर्त विचार, नाम, सब कुछ लिखना संभव हो गया,
क्योंकि अब आप भाषा की ध्वनियों को पकड़ पा रहे थे।
एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, इससे पहले कि असली लेखन शुरू हुआ, उससे पहले भी तो लोग हिसाब किताब रखते थे, संचार करते थे, उसे कहते हैं प्रोटो राइटिंग,
आदि लेखन।
जैसे
जैसे
मेसोपोटामिया में, मतलब आज के इराक में, करीब 8000 ईसा पूर्व मिट्टी के छोटे छोटे टोकन मिलते हैं, भेड़ के लिए अलग टोकन, अनाज के लिए अलग, इस तरह से।
हाँ सुना है।
और कमाल की बात यह थी कि इन टोकनों को मिट्टी के खोखले गोलों में बंद कर देते थे और फिर गोले के ऊपर उन्हीं टोकनों की छाप बना देते थे।
सही कहा, ये तो मतलब प्रतीक का भी प्रतीक हो गया, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ एक और कदम।
और इसी से फिर दुनिया की पहली ज्ञात सच्ची लेखन प्रणाली निकली, क्यूनिफॉर्म, सुमेर में लगभग 3300 ईसा पूर्व।
हाँ, कीलाक्षर।
शुरू में ये निशान भी चित्रों जैसे ही थे, पर जल्द ही एक गीली मिट्टी पर सरकंडे की कलम से दबाकर बनाए जाने वाले पच्चर या कील जैसे निशानों में बदल गए, इसलिए कीलाक्षर।
और ये शुरू क्यों हुई, कोई महान साहित्य लिखने के लिए?
नहीं नहीं, शुरुआत तो बड़ी प्रैक्टिकल थी, प्रशासन और व्यापार का हिसाब किताब रखना, मंदिर के गोदामों में कितना अनाज आया कितना गया, इस तरह की जरूरतें।
अच्छा, मतलब जरूरत ने आविष्कार किया।
बिल्कुल, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये लिपि बहुत लचीली निकली, अगले 3000 सालों तक कई अलग अलग भाषाएं बोलने वाली संस्कृतियों ने इसे अपनाया, अक्कादियन, बेबीलोनियन, हित्ती, सबने इसे अपनी भाषा लिखने के लिए इस्तेमाल किया।
और गिलगामेश महाकाव्य जैसे ग्रंथ भी इसी में लिखे गए।
हाँ, गिलगामेश महाकाव्य भी इसी लिपि में हम तक पहुंचा है। तो देखिए, शुरुआत हिसाब किताब से हुई और पहुंची महाकाव्य तक।
वाह। अब मेसोपोटामिया से थोड़ा पश्चिम चलें, मिस्र। वहां की हायरोग्लिफ तो बहुत फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए।
हाँ, मिस्र की चित्रलिपि शायद इतिहास की सबसे जानी पहचानी और देखने में सुंदर लिपि है, हजारों साल तक इस्तेमाल में रही, खासकर मंदिरों और मकबरों की दीवारों पर।
और जैसा हमने रोजेटा स्टोन में देखा, ये भी मिक्स सिस्टम था।
बिल्कुल, इसमें शब्द चिन्ह भी थे, ध्वनि संकेत भी थे ज्यादातर व्यंजनों के लिए, और कुछ खास तरह के मौन संकेत भी थे, डिटर्मिनेटिव्स कहते हैं उन्हें, वो शब्द के आखिर में लगकर बताते थे कि ये शब्द किस कैटेगरी का है, आदमी है, देवता है, शहर है वगैरह।
लेकिन क्या इतनी सुंदर और कॉम्प्लेक्स लिपि रोजमर्रा के काम आती थी, मतलब बाजार से सामान की लिस्ट बनानी हो तो?
हाँ हाँ, अच्छा सवाल है। नहीं, रोजमर्रा के कामों के लिए इसके सरल, हाथ से तेजी से लिखे जाने वाले रूप बन गए थे। एक था हियरेटिक, जो पुजारी और सरकारी बाबू इस्तेमाल करते थे, और बाद में आया डिमोटिक, जो आम लोगों के लिए था।
तो एक ही सभ्यता जरूरत के हिसाब से अलग अलग पर जुड़ी हुई लिपियां इस्तेमाल कर सकती थी।
हाँ, ये दिखाता है कि सिस्टम कितना अडेप्टिव हो सकता है।
चलिए, अब कुछ और कोड तोड़ने की कहानियों पर आते हैं। एक आपने जिक्र किया था लीनिया बी, ये कहाँ की लिपि थी?
ये माइसिनियन सभ्यता की लिपि थी, प्राचीन ग्रीस में, करीब 1450 से 1200 ईसा पूर्व, और ये दशकों तक एक पहेली बनी रही, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कौन सी भाषा है।
फिर इसे कैसे समझा गया?
इसे समझने का कारनामा किया माइकल वेंट्रस ने 1952 में, और कमाल की बात यह है कि वेंट्रस कोई प्रोफेशनल भाषाविद नहीं थे, वो आर्किटेक्ट थे।
अरे वाह।
हाँ, उन्होंने बिना किसी रोजेटा स्टोन जैसी मदद के सिर्फ लॉजिक और पैटर्न देखकर ये साबित किया कि लीनियर बी असल में ग्रीक भाषा का ही एक बहुत पुराना रूप लिखती है। उन्होंने सारे निशानों की ग्रिड बनाई, देखा कौन सा निशान कितनी बार आता है, कहाँ आता है, और धीरे धीरे उसके साउंड वैल्यूज निकाल लिए। एकदम दिमागी जासूसी।
जबरदस्त। अच्छा, और अमेरिका की तरफ भी कोई लेखन प्रणाली थी?
हाँ, अमेरिका की अकेली प्रमुख प्राचीन लेखन प्रणाली थी मायन ग्लिफ्स। इसे भी समझने में बहुत वक्त लगा। पहले लोग सोचते थे ये बस कैलेंडर वगैरह के निशान हैं, पर 20वीं सदी के आखिर तक ये साफ हो गया कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स लोगो सिलेबिक लिपि है। मतलब इसमें शब्द चिन्ह और अक्षर चिन्ह दोनों थे, मिस्र और सुमेर की तरह ही।
ये बात बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में बिना संपर्क के भी लेखन के सिद्धांत काफी मिलते जुलते निकले।
लेकिन क्या सारी पुरानी लिपियां अब पढ़ी जा चुकी हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फील्ड आज भी रहस्यों से भरी है। क्रीते की मिनोन सभ्यता की लीनियर ए लिपि है, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया उसे।
और अपनी सिंधु घाटी की लिपि?
हाँ, वो तो सबसे बड़ा रहस्य है शायद। हजारों मोहरें मिली हैं, बर्तन मिले हैं जिन पर छोटे छोटे लेख हैं, पर कोई नहीं जानता ये कौन सी भाषा है, क्या लिखा है। दशकों की कोशिशें बेकार गई हैं।
बाप रे।
और भी हैं, प्राचीन ईरान की प्रोटो एलमाइट लिपि, ईस्टर आइलैंड की रोंगोरोंगो, तो कई पहलियां भी बाकी हैं, लेकिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
अब एक बड़े मुद्दे पर आते हैं जिस पर अक्सर बात होती है, वर्णमाला बनाम बाकी सिस्टम्स। क्या अल्फाबेट वाकई सबसे बेहतर है? रॉबिन्सन इसी सोच पर सवाल उठाते हैं।
देखिए,
माना जाता है कि अल्फाबेट का आविष्कार इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ, करीब 1800 ईसा पूर्व सिनाई प्रायद्वीप में।
किसने किया?
शायद वहां काम करने वाले सेमिटिक भाषा बोलने वाले मजदूरों या सैनिकों ने। उन्होंने मिस्र की कॉम्प्लेक्स लिपि से आइडिया लिया, पर उसे बहुत सिंपल बना दिया। उन्होंने कुछ ही निशानों का इस्तेमाल सिर्फ व्यंजनों की आवाज दिखाने के लिए किया। इसे अब्ज़द कहते हैं। इसमें स्वर नहीं लिखे जाते जैसे अरबी या हिब्रू में।
अच्छा, और फिर ये फैला कैसे?
फिनिशियन व्यापारी थे, वो इसे पूरे भूमध्य सागर में ले गए। फिर यूनानियों ने इसे अपनाया और उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने व्यंजनों के साथ साथ स्वरों, वाउल्स के लिए भी निशान जोड़ दिए।
तो वो बनी पहली सच्ची वर्णमाला?
हाँ, कह सकते हैं। और इसी यूनानी वर्णमाला से फिर लैटिन यानी रोमन, सिरिलिक रूसी वगैरह, और हाँ, हमारी अपनी ब्राह्मी लिपि भी निकली, जिससे देवनागरी और भारत की ज्यादातर लिपियां निकली।
वर्णमाला का फायदा तो साफ लगता है, कम निशान याद करने पड़ते हैं, सीखना आसान होता है, तो ज्यादा लोग पढ़ लिख सकते हैं ना।
हाँ, ये फायदे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रॉबिन्सन कहते हैं कि इसे ही एकमात्र या सबसे अच्छा पैमाना मान लेना, ये एक तरह का पश्चिमी नजरिए का बायस है। वो चीनी लेखन का उदाहरण देते हैं।
हाँ, चीनी अक्षर।
ये दुनिया की सबसे पुरानी लगातार इस्तेमाल होने वाली लेखन प्रणाली है, और ये मूल रूप से लोगोग्राफिक है, यानी शब्द चिन्हों पर आधारित।
लेकिन वो तो बहुत मुश्किल मानी जाती है, हजारों अक्षर याद करने पड़ते हैं।
मुश्किल तो है, हाँ, लेकिन चीनी अक्षर सिर्फ तस्वीरें नहीं होते। ज्यादातर अक्षर दो हिस्सों से बनते हैं। एक हिस्सा रेडिकल, मतलब की तरफ इशारा करता है, जैसे पानी से जुड़ा शब्द है या लकड़ी से, और दूसरा हिस्सा फोनेटिक, बताता है कि इसे बोलना कैसे है, उच्चारण का संकेत देता है।
अच्छा, ये तो नहीं पता था।
और इसके अपने अनोखे फायदे हैं, जैसे चीन में कई बोलियां हैं जो बोलने में बिल्कुल अलग हैं, समझ नहीं आती, लेकिन लिखने में सब एक ही लिपि का इस्तेमाल करते हैं, तो लिखित भाषा सबको जोड़ती है। इसने चीन की इतनी बड़ी सभ्यता को हजारों साल तक एक साथ बांधे रखने में बहुत मदद की है। तो इसे सिर्फ पिछड़ा हुआ या अकुशल मान लेना, ये सही नहीं है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और जापान का क्या? वहां तो सुना है और भी कॉम्प्लिकेटेड है मामला।
हाँ, जापानी लेखन प्रणाली तो शायद दुनिया की सबसे जटिल पर सबसे क्रिएटिव प्रणालियों में से एक है। ये दिखाती है कि एक कल्चर कैसे दूसरी जगह से लिपि उधार लेकर उसे अपनी भाषा के हिसाब से बिल्कुल बदल सकता है।
कैसे?
जापानियों ने चीन से अक्षर लिए, उन्हें वो कांजी कहते हैं, लेकिन जापानी भाषा का व्याकरण चीनी से एकदम अलग है, तो उन्होंने क्या किया, दो और लिपियां बना ली जो अक्षरात्मक हैं, सिलेबिक।
दो और?
हाँ, एक है हिरागाना, ये व्याकरण के हिस्सों के लिए या मूल जापानी शब्दों के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरी है काताकाना, ये ज्यादातर विदेशी शब्दों के लिए या किसी बात पर जोर देने के लिए यूज होती हैं।
बाप रे, मतलब एक ही वाक्य में तीन तीन लिपियां चल रही होती हैं।
बिल्कुल, एक आम जापानी वाक्य में आपको कांजी, हिरागाना और काताकाना तीनों मिल जाएंगे। ये दिखाता है कि लेखन प्रणालियां कितनी फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। कोई एक परफेक्ट सिस्टम नहीं होता।
चलिए अब इतिहास से निकलकर थोड़ा आज की बात करते हैं। ये जो डिजिटल दुनिया आई है, इसने लिखने पढ़ने पर क्या असर डाला है? हाथ से लिखना तो कम हो ही गया, कीबोर्ड का जमाना है।
हाँ, और टेक्स्ट मैसेजिंग है, इंटरनेट वाली भाषा है, स्पेलिंग बदल रही है, इन सबको लेकर काफी चिंताएं भी जताई जाती हैं। पर सबसे मजेदार चीज जो उभरी है वो है इमोजी।
हाँ, इमोजी। क्या ये एक नई तरह की चित्रलिपि है? क्या लगता है?
कह सकते हैं ये वो काम करते हैं जो लिखे हुए शब्दों से शायद न हो पाए, जैसे भाव बताना, टोन बताना।
हाँ, वो तो है।
रॉबिन्सन इसे लेखन का पतन नहीं मानते, वो कहते हैं ये लेखन का अगला विकास है, अगला एवोल्यूशन है। ये हमारी वही पुरानी जरूरत है कि हम विजुअल संकेतों से बात करें। हजारों साल पहले लोग गुफाओं में चित्र बनाते थे, मिस्र वाले हाइरोग्लिफ्स यूज करते थे, आज हम इमोजी यूज कर रहे हैं।
मतलब लेखन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये हमेशा बदलता रहता है।
बिल्कुल, तकनीक के साथ, समाज के साथ।
तो इस पूरी चर्चा से अगर कुछ बड़े सबक या मेन थीम्स निकालें तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक तो यही है कि लेखन सिर्फ बात पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसने इंसानी सोच को ही बदल दिया है। इसने बड़े और जटिल समाज बनाना मुमकिन किया। कानून, विज्ञान, साहित्य, ये सब लिखना संभव होने से ही पनप पाए। ज्ञान को जमा करना, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये सब लेखन से ही हुआ। ये सच में एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन था।
सही का, सोचिए ना, अगर हमारे वेद, उपनिषद या पुराने गणित के सूत्र लिखे ना गए होते तो क्या हमारी ज्ञान परंपरा आज जैसी होती? शायद नहीं। दूसरा अहम पॉइंट है लिपियों की विविधता के पीछे छुपा एक कॉमन लॉजिक। चाहे मिस्र की चित्रलिपि हो, चीनी अक्षर हो या हमारी देवनागरी, लगभग सभी सिस्टम्स में शब्द संकेत, अक्षर संकेत और ध्वनि संकेत, इनका मिक्सचर होता है। बस रेसिपी अलग अलग होती है। कोई एक सही तरीका नहीं है, कई कामयाब तरीके हैं।
हाँ, और भारत तो खुद इसका कितना बड़ा उदाहरण है। देखिए कितनी सारी लिपियां साथ साथ चलती हैं यहाँ, हर एक अपने तरीके से काम करती है।
तीसरा, जो पहले भी बात हुई, अल्फाबेट की कथित सुपीरियोरिटी पर सवाल उठाना। ये मान लेना कि अल्फाबेट ही सबसे विकसित है, ये शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसके आदि हैं। चीनी या जापानी जैसी प्रणालियों की अपनी ताकतें हैं, जैसे अलग अलग बोलियों को जोड़ना या कल्चरल पहचान को मजबूत करना। सिर्फ सीखने में आसानी ही सब कुछ नहीं है।
भारत में भी तो कभी कभी ये बहस होती है ना कि किसी भाषा के लिए कौन सी लिपि बेस्ट है। ये दिखाता है कि लिपि सिर्फ लिखने का टूल नहीं है, ये पहचान से भी जुड़ा मुद्दा है।
चौथा पॉइंट है पुरानी भूली हुई लिपियों को समझना, एक दिमागी एडवेंचर है। शैम्पुलियन की कहानी हो या वेंट्रिस की, ये दिखाती हैं कि कैसे लॉजिक और मेहनत से हम अतीत की आवाजों को फिर से सुन सकते हैं। और ये एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। सिंधु लिपि जैसी पहेलियां आज भी इंतजार कर रही हैं।
बिल्कुल, जरा सोचिए अगर कल सिंधु लिपि पढ़ ली जाए तो हमें अपने इतिहास के बारे में क्या कुछ नया पता चल सकता है, कितना रोमांचक होगा वो।
और पांचवा, लेखन लगातार विकसित हो रहा है। मिट्टी की गोलियों से शुरू हुआ सफर आज स्मार्टफोन की स्क्रीन तक आ पहुंचा है। डिजिटल बदलाव, इमोजीज, इंटरनेट स्लैंग, ये सब अंत नहीं है, बल्कि इस कहानी के नए चैप्टर हैं। लेखन हमेशा तकनीक और समाज के साथ बदला है और आगे भी बदलता रहेगा।
हाँ, और हम देख भी रहे हैं कि कैसे मोबाइल और कंप्यूटर ने भारतीय भाषाओं में लिखना कितना आसान कर दिया है।
बिल्कुल,
नए फॉन्ट आ रहे हैं, लोग अपनी भाषा में ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, ये भी तो विकास ही है।
रॉबिन्सन की किताब में कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं। चलिए कुछ ऐसे खास विचारों पर बात करते हैं जो उनके तर्कों का निचोड़ लगते हैं।
हाँ जरूर।
पहला विचार, लेखन केवल भाषण का नौकर नहीं बल्कि उसका साथी है, और कुछ मायनों में उसका मालिक भी। यह ऐसी सटीकता और जटिलता को संभव बनाता है जो केवल मौखिक संस्कृति में असंभव है। मतलब साफ है, लिखने से हम ज्यादा गहरे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स विचार सोच पाते हैं और उन्हें सहेज कर रख पाते हैं।
बिल्कुल। दूसरा विचार, वर्णमाला की जीत एक ऐतिहासिक तथ्य है लेकिन भाषाई या बौद्धिक जरूरत नहीं। यह मान लेना कि चीनी अक्षर केवल जड़ता के कारण 3000 से ज्यादा सालों तक जिंदा रहे, उनकी शक्ति और सुंदरता को जबरदस्त तरीके से कम आंकना है।
ये सीधी चुनौती है उस सोच को कि अल्फाबेट ही बेस्ट है। ये कहता है कि दूसरी प्रणालियों की सफलता के अपने गहरे कारण हैं, उन्हें गम्मत समझो, सुनते हैं जो हजारों सालों से चुप थीं और उन्हें समय के पार हमसे सीधे बात करने का मौका देते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक तरह का जादू है इतिहास को जिंदा करने का।
हाँ, बहुत खूबसूरत बात है ये। और चौथा विचार, इमोजीज और इंटरनेट स्लैंग का उदय
लेखन की मौत नहीं बल्कि इसका ताजा तरीन रूप है। यह अर्थ, ध्वनि और अब तस्वीर को मिलाने की मानवता की पुरानी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हमारा संचार तेज, ज्यादा अर्थपूर्ण और ज्यादा अभिव्यंजक बनता है। ये डिजिटल बदलावों को एक बड़े हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखता है। ये पतन नहीं, विकास है।
ठीक है, ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना है? मतलब प्रैक्टिकल क्या है इसमें?
अरे बिल्कुल है। सबसे पहले तो ये आपकी सांस्कृतिक समझ और प्रशंसा बढ़ाता है। अब आप किसी म्यूजियम में पुरानी पांडुलिपियां या शिलालेख देखेंगे, या कहीं घूमने गए और अजीब से अक्षर दिखे तो वो सिर्फ डिजाइन नहीं लगेंगे।
हाँ, आप सोचेंगे कि ये कैसे काम करते होंगे।
सही, आप सोचेंगे कि ये किसी जमाने में लोगों की बातें थीं, उनका लॉजिक था। जैसे भारत में ही किसी पुराने मंदिर की दीवारों पर कुछ लिखा देखें तो अब शायद ये ख्याल आए कि अरे, इसे लिखने वाले पढ़ने वाले लोग कौन थे, क्या कह रहे थे वो।
हाँ, ये नजरिया बदलता है। और दूसरा फायदा, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास।
बिल्कुल, लिपियों को समझने की कहानियां, जैसे वेंट्रिस ने लीनियर बी को समझा, ये दिखाती हैं कि कैसे लॉजिक, पैटर्न पहचानना, हाइपोथेसिस बनाना, इससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। ये दिमागी कसरत हर जगह काम आती है। इसके अलावा ये ग्लोबल कम्युनिकेशन की बेहतर समझ देता है। दुनिया सिर्फ रोमन या देवनागरी लिपि में नहीं लिखती, अरबी है, चीनी है, जापानी है। इन लिपियों की अपनी वैल्यू है। आज की कनेक्टेड दुनिया में ये विविधता समझना जरूरी है। हो सकता है आपके किसी सहकर्मी या दोस्त की भाषा की लिपि अलग हो, उसके बारे में थोड़ा जानने से शायद बातचीत और बेहतर हो जाए।
और हाँ, डिजिटल युग को लेकर भी शायद थोड़ा नजरिया बदल सकता है। टेक्स्ट मैसेज की भाषा या इमोजी को लेकर इतनी चिंता करने के बजाय हम इसे भाषा के बदलते रूप की तरह देख सकते हैं।
और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें साक्षरता के अनमोल तोहफे की कद्र करना सिखाता है। पढ़ना लिखना हमें कितनी आसानी से मिला हुआ लगता है, लेकिन ये मानव इतिहास का एक बहुत नया और शक्तिशाली आविष्कार है। हमें उन अक्षरों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें हजारों साल के ज्ञान और कहानियों से जोड़ते हैं।
बिल्कुल, ये हमें उन कोशिशों का महत्व भी समझाता है जो आज भी दुनिया भर में लोगों को साक्षर बनाने के लिए की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि लिखना कितना फंडामेंटल होते हुए भी कितना चमत्कारी है। हम जिन अक्षरों को रोजाना इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे हजारों साल की इंसानी बुद्धि, जरूरतें और क्रिएटिविटी छिपी है। ये किताब दुनिया भर की लिपियों के राज खोलती है और दिखाती है कि अलग अलग दिखने के बावजूद उनके पीछे कुछ कॉमन सिद्धांत काम करते हैं।
मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये जानना थी कि वर्णमाला ही सब कुछ नहीं है। चीनी या जापानी जैसी प्रणालियों की अपनी गहरी लॉजिक और सांस्कृतिक अहमियत है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और हाँ, ये अनसुलझी लिपियाँ जैसे सिंधु घाटी की लिपि एक रोमांचक रहस्य की तरह हैं जो याद दिलाती हैं कि जानने को अभी कितना कुछ बाकी है। सच कहूँ तो अब किसी भी लिखे हुए शब्द या निशान को मैं पहले की तरह नहीं देख पाऊंगी।
और अब एक विचार आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स्ट लिखने या तक कि तस्वीरें बनाने में बेहतर हो रही है, और जैसे जैसे टेक्स्ट, आवाज और इमेज और ज्यादा घुलमिल रहे हैं, आपको क्या लगता है भविष्य में लेखन के कौन से नए अनदेखे रूप सामने आ सकते हैं? क्या तब भी रॉबिन्सन के बताए बुनियादी सिद्धांत ध्वनि, प्रतीक और अर्थ का खेल उतने ही लागू रहेंगे?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।